राम कथा, कुछ राम कथा अगर होएगी तो इससे भी हमारे को पता चलेगा कि भगवान के प्रति किस हद तक समर्पण होना चाहिए, किस हद तक जाना चाहिए। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी की भक्ति की जो हद है, या मिया की जो दीवानगी है, या और अन्य भक्तों की जो दीवानगी है, उससे 1% लेस में भी काम नहीं चलेगा। नेवर अचीव अवर परफेक्शन, कि दीवानगी में कुछ कमी हो, अगर वहां दीवानगी पूरी नहीं है तो कहीं और दीवानगी चल रही है। तो रामायण में जैसे आप लोग जानते हैं, कैकेयी के कहने पे दशरथ जी ने भगवान राम को बोला कि आप वनवास ग्रहण कीजिए। तो एक वास्तव में दशरथ जी ने स्पष्ट नहीं बोला था, ये एक इनडायरेक्ट रूप से हिंट दिया जा रहा था, बोला कैकेयी में था। जब भगवान राम आए थे कोप भवन में, कोप भवन समझते हैं आप, कोप भवन होता है जहां पे परिवार के व्यक्ति दिन के एक समय पे एकत्रित होते हैं, और जो राजा होते हैं अगर उनको कोई समस्या होती है, राजा से कोई समस्या होती है तो बताते हैं। तो कोप भवन को आप कंप्लेंट भवन भी कह सकते हैं। तो जब कोप भवन में कैकेयी आई थी और एकदम जमीन पर लेटी हुई थी, रो रही थी, और इस प्रकार से जब दशरथ भी रो रहे थे तो उनके मंत्री जो थे वह लेके आए भगवान राम को। भगवान राम ने इस स्थिति में देखा रोते हुए, तो पूछा कि ये माते क्यों रो रही हो? तो कहती है, देखो तुम्हारे पिताजी वैसे तो कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, पर एकदम कायर दिल के हैं, और मेरे को उन्होंने वचन दिया था, वचन में मैंने तुमको 14 वर्ष का वनवास मांगा और ये वचन पूरा नहीं कर रहे। अगर पिता असमर्थ हो किसी वचन को पूरा करने में, तो पुत्र का कर्तव्य बनता है कि पिता के वचन की लाज रखे। तो तुमको, तुम देख लो तुम्हें क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से बड़ी निर्लज भाषा में बोल रही थी कैकेयी, बिल्कुल बिल्कुल भी कुछ, बिल्कुल बिल्कुल स्वार्थ से प्रेरित होके। तो भगवान राम ने बोला, अरे मैं तो धन्य हो गया, मेरी वैसे भी बहुत इच्छा थी कि मैं वन में जाऊं और भगवान के भक्तों का संग करूं और अपने जीवन को और श्रेष्ठ बनाऊं। ये भगवान राम कह रहे हैं, मैं साधुओं का संग करना चाहता था, ये तो बहुत अच्छा है, मेरी भी बहुत समय से यही इच्छा थी, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब किसी तरह भगवान दशरथ तो नहीं चाहते थे ऐसा हो, पर इस प्रकार की बात कहकर राम जी चले गए। और जिस दिन ये बात हुई थी उस दिन भगवान राम का राज्याभिषेक होना था, उसी दिन होना था, और पूरे शहर में तैयारी हो चुकी थी। और फिर अपनी वो माता कौशल्या के पास गए, तो माता कौशल्या ने देखा और कहा कि अभी आप तैयार नहीं हुए और भोजन स्वीकार नहीं किया, तो अभी तो आपका राज्याभिषेक होना है, भगवान महाराज दशरथ ने आपको राजा बनाना है। तो भगवान राम कहते हैं कि मेरे को महाराज दशरथ इस छोटे से शहर का राजा नहीं बना रहे, मेरे को वन विभाग का मंत्री बना रहे हैं। ये जो शहर है ना मेरे लिए बहुत छोटा पड़ेगा, इसलिए मुझे पूरे वन का राज्य दे रहे हैं। इस प्रकार से भगवान राम ने कौशल्या को उत्तर दिया और कुछ संवाद हुआ जो कि हम पूरा डिटेल में भी चर्चा नहीं कर सकते। फिर तो उसके बाद ये बात पता चली सीता माता को, तो भगवान ने बोला सीता माता को कि मेरे को मेरे पिता के वचन का पालन करने के लिए मैं वन में जा रहा हूं 14 वर्षों के लिए, तो मेरे को पिता की आज्ञा है इसलिए मैं जा रहा हूं, और तुम यहीं पर रहना और अपनी सास की सेवा करना, इसी से तुम्हारे को तुम्हारा जीवन सिद्ध होगा। तो सीता माता कहती है कि आपको आपके पिता ने आज्ञा दी है कि आप वन में जाओ, आप कह रहे हो मेरे को आज्ञा नहीं दी, पर मेरे पिता ने भी मेरे को आज्ञा दी है। आपके पिता ने आपको आज्ञा दी कि 14 वर्ष के लिए वन में जाओ, मेरे पिताजी ने मेरे को आज्ञा दी है कि मैं आजीवन आपकी सेवा में निरंतर लगी रहूं, मेरे को ये आज्ञा नहीं दी है कि आप जब महल में होंगे तभी आपकी सेवा करूं, आप जंगल में हो या कहीं पर भी हो मैं आपकी सेवा करूंगी। तो आपको भी आपके पिता की आज्ञा प्राप्त हुई है और मेरे को भी मेरे पिता की आज्ञा प्राप्त हुई है, तो मैं भी चलूंगी। तो भगवान राम बड़ा प्रयास कर रहे थे कि मत चलो मत चलो, तो सीता माता जो थी वो कह रही थी मैं भी चलूंगी। तो भगवान राम ने अपने जो औजार हैं वो लिए और निकलने की एकदम तैयारी कर लिया। औजार क्या थे? कोई सूट केस नहीं था, कोई चेकबुक नहीं थी। औजार ये थे कि एक धनुष बाण था, एक तलवार थी और एक खड्ग था। क्योंकि जब जंगल में आते कई रास्ते होते हैं जो काट के ही जाना पड़ेगा, उसके आगे आप जा ही नहीं सकते बिना काटे। तो ये तीन चीजें भगवान राम ने ले ली थी। ये बात अचानक ही पता चली किनको? लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी को जैसे ही बात पता चली वो बिल्कुल व्याकुल हो गए, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और वो एकदम पागलों की तरह भागे भगवान राम की ओर। और भगवान राम के पास पहुंचते ही उनको खबर तो पहुंच गई थी क्या हो रहा है। फिर भी वाल्मीकि रामायण में ऐसा आता है कि लक्ष्मण जी ने पूछा कि भ्राताश्री आप जा कहां रहे हो? उनको पता था, पर फिर उन्होंने पूछा आप जा कहां रहे हो? तो भगवान राम कहते हैं कि मैं अपने पिता की आज्ञा, दशरथ की आज्ञा से पूरी करने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास को जा रहा हूं। ये बात जैसे ही सुनी लक्ष्मण जी को चला एकदम क्रोध। उन्होंने बोला क्या ये बात आपको दशरथ में होने के लिए? जंगल में जाओ, मैं अभी दशरथ का वध कर देता हूं। लक्ष्मण के भी पिता है दशरथ। लक्ष्मण कहते हैं मैं अभी पिता का वध कर देता हूं। वो होते कौन है आपको कहीं पे भेजने वाले? आप हैं अयोध्या के राजा, दशरथ राजा नहीं है, ये भरत राजा नहीं है। आप नहीं जाओगे कहीं पे भी, आपका राज्याभिषेक मैं अपनी तलवार से करूंगा। अगर कोई भी इसे जरा सा भी देखने डालेगा तो वो उसको मैं मार डालूंगा। और सारी जनता आपके पक्ष में है, सारे मंत्री आपके पक्ष में है, आज आपका राज्याभिषेक हो रहा है। आप कहीं नहीं जाओगे, आज आपका राज्याभिषेक होगा। और अगर भरत ने भी कुछ समस्या करने की कोशिश करी तो भरत भी उसी गति को प्राप्त होगा जो उसके पिता को गति प्राप्त हो रही है, दशरथ को। मतलब यह कि मैं भरत को भी मार दूंगा, भरत को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। और एकदम आग बबूला आंखें और बिल्कुल मारने की कगार पे थे। तो भगवान राम ने उनको रोका और बहुत समझाया कि जब पिता जब असमर्थ होता है कोई वचन पूरा करने में तो ये पुत्र का कर्तव्य होता है, तो पुत्र को ये अपने कर्तव्य पालन करना चाहिए, तो इसमें आपको बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। तो किसी तरह भगवान राम ने जब समझाया, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, तो भगवान ने समझाया तो कुछ हद तक वो समझे। और उन्होंने एक शर्त रखी, एक शर्त है कि अगर आप चाहते हो कि आप जंगल में जाओ तो एक शर्त में जा सकते हो। क्या शर्त है वो? मैं भी आपके साथ जाऊंगा। अब भगवान तो किसी को साथ लेके नहीं जाना चाहते थे, परंतु वो पीछे उन्होंने बोला कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तो भगवान राम ने अनेक प्रकार की युक्तियां प्रस्तुत करी कि वो ना जाए। उन्होंने बोला कि देखो अभी पिताजी की हालत तो देखी है वो कैसी है, पिताजी की हालत तो बहुत खराब है, और मैं भी जंगल में चला जाऊंगा और भरत भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है, कोई भी नहीं है राज्य में, तो राज्य कैसे चलेगा, जनता की सेवा कैसे होगी? ऐसा करो यहां पे रहो, जनता की सेवा करो, क्योंकि जो राजा, ये राम वाक्य है, भगवान वाक्य, वेद वाक्य, जो राजा अपनी प्रजा की सही रूप से सेवा नहीं करता, अगर प्रजा दुखी रहती है राजा की वजह से, तो ऐसा राजा जो है नरक को प्राप्त होता है। ये भगवान राम ने बोला। तब ये सोच लीजिए अगर थोड़ी सी भी दुख प्राप्त होता है तो भी नरक में जाना पड़ता है राजा को, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भगवान ने समझाने का प्रयास किया, फिर ये बोला कि मैं भी नहीं होऊंगा, घर में भी कोई नहीं होगा, तो आपको घर में रहना चाहिए। और फिर लक्ष्मण कहते हैं कि आप एक तो मेरे को धर्म और ये नीति की बातें मुझे मत सिखाओ। धर्म और नीति की बातें उन लोगों के लिए होती हैं जो स्वर्ग जाने की जिनकी कामना होती है। मैंने स्वप्न में भी किसी को अपना मां या बाप नहीं माना, मैं तो आपके स्नेह से ही पला बड़ा हूं, मैं आपके अलावा किसी को भी नहीं जानता। भगवान राम ये देख रहे थे कि भगवान लक्ष्मण, लक्ष्मण भी भगवान है, कि भगवान लक्ष्मण जो है उनकी जो आसक्ति थी भगवान राम में प्रगाढ़ थी। आसक्ति भगवान राम में प्रगाढ़ है इसी से स्पष्ट होता है, जो व्यक्ति अपने बाप को मारने के लिए उतारू हो जाए इसी बात पे कि राम को बोला कि वनवास जाओ। तो आसक्ति जो थी बहुत गाढ़ी थी, परंतु भगवान ने फिर भी बहुत प्रयास किया समझाने का, पर लक्ष्मण जो थे बिल्कुल भी बात मान नहीं रहे थे। लक्ष्मण ने बोला देखो आप भगवान हो, आप जो कहोगे मानना तो मुझे है, परंतु अगर आप मुझे लेके नहीं जाओगे तो मेरे पास और कोई उपाय नहीं रहेगा आत्महत्या करने के अलावा। या तो मेरे को ले जाओ या मैं आत्महत्या करूंगा, आप मेरे को अपने से जुदा नहीं रख सकते। ये तो उसी प्रकार है जैसे कि किसी एक प्राणी के ऊपर एक पर्वत दे दिया जाए, अब पर्वत जितना बोझ थोड़ा कोई ढो सकता है कोई भी सामान्य प्राणी। तो अगर आप मेरे को अपने से जुदा कर रहे हो तो ये इतना बड़ा बोझ मेरे ऊपर देने के समान है, तो मैं ये सब मंदराजल पर्वत का बोझ नहीं उठा सकता, आप मेरे को अपने साथ लेके जाओ और ये नीति वगैरह का उपदेश मेरे को मत दो, मेरी कहीं पर जाने की कोई इच्छा नहीं है। तो भगवान ने किसी तरह बोला ठीक है तुम चलना चाहते हो तो चलो, परंतु एक काम करो अपनी माता से आज्ञा लेके आओ। लक्ष्मण जी की माता कौन है? सुमित्रा जी। क्योंकि माता पिता का सर्वप्रथम अधिकार होता है पुत्र पे। उन्होंने बोला भाई का अधिकार नहीं होता, जब फॉर्म भी आप लोग भरते हो स्कूल वगैरह में तो फादर्स नेम लिखा जाता है, मदर्स नेम विदेश में तो मदर्स नेम होता है क्योंकि फादर तो रहते नहीं है, तो फादर्स नेम या मदर्स नेम होता है, ब्रदर्स नेम नहीं होता। तो माता से आज्ञा लेके आओ। फिर भगवान लक्ष्मण गए और वो बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे, परंतु जब राम ने आज्ञा दे दी तो उसका विरोध भी नहीं किया जा सकता। तो राम की आज्ञा प्राप्त होते ही लक्ष्मण चित्त था रघुनंदन में भगवान राम में, और जो शरीर था शरीर को किसी तरह ढोते हुए चले गए सुमित्रा माता के पास। जाकर ही प्रणाम किया और पूरी कथा सुनाई कि कैकेयी ने वनवास की मांग की है, भगवान राम जा रहे हैं तो वनवास की है और मैं भी जा रहा हूं सीता माता मैं और भगवान राम। जैसे ही ये बात सुनी तो सुमित्रा माता जो है उनका तो वही हाल हुआ कि जैसे जंगल में आग लग जाती है और एक हिरन फंस जाता है उसके अंदर, बिल्कुल वो समझ नहीं आ रहा क्या करें, इतना बड़ा बात हो गई है। परंतु उन्होंने अपने आप को संभाला और लक्ष्मण ने बोला मैं तो आपसे आज्ञा लेने के लिए आया हूं। तो सुमित्रा माता कहती है एक बात बताओ तुम उससे आज्ञा लेने क्यों आए हो, तुम्हारी माता तो वैदेही है, वैदेही कौन है? माता सीता। तुम्हारी माता तो सीता है और तुम्हारे पिता राम है, तुम उससे आज्ञा लेने क्यों आए हो? वैराग्य देखिए, सर्वप्रथम ने वैराग्य देखा भगवान राम का, उनका राज्याभिषेक हो रहा है तो क्या कह रहे हैं कि मैं तो वैसे ही संतों से मिलने जाना चाहता था, वैसे ही जंगल में जाना चाहता था। कौशल्या माता से मिल रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, मेरे को वन विभाग का राज्य दिया गया है। अब लक्ष्मण का वैराग्य देखिए, वो कहते हैं पिता को मार डालूंगा, दशरथ को मार डालूंगा, भरत को मार डालूंगा। अब आगे कथा खत्म नहीं हुई, तो सुमित्रा के पास गए, सुमित्रा जगह तो मेरे पास आए क्यों? और उससे पहले बता रहे हैं रामायण में कि उनकी स्थिति वैसे थी जैसे हिरनी की स्थिति होती है जब जंगल में आग लग जाती है, उसके बावजूद भी कह रही है असली माता की बात भांति, वो असली माता थी। असली माता क्या होती है? सहज सुहृद होती है, सहज नेचुरल वेलविशर होती है। जो असली माता होती है वो नेचुरल वेलविशर होती है, अगर असली माता होती है तो नेचुरल वेलविशर होगी। नेचुरल जो माता होगी वो यही चाहिए कि उनके पुत्र का जो मन है वो काम में ना लगे राम में लगे। सामान्य माता क्या चाहेगी? आपका मन आपका तन काम में लगे, काम वासनाओं में, काम वासनाओं से प्रेरित किसी भी काम में लगे। जो असली माता वो चाहेगी कि मन किसी न किसी प्रकार से राम में लगे। तो माता सुमित्रा बहुत प्रसन्न थी कि मेरा पुत्र इतना अच्छा व्यक्ति है कि इसका मन जो है रघुनंदन में लग चुका है। सुमित्रा माता बहुत खुश थी, वो पूछ रहे अब आए क्यों मेरे पास, आपको आना ही नहीं चाहिए था। और बहुत धन्यवाद दे रही थी भगवान को कि ऐसा पुत्र मेरी कोख से जन्म लिया है कि जो भगवान राम से इतना आसक्त है। अगर मेरा पुत्र भगवान राम से आसक्त न होता तो इससे अच्छा तो मैं बांझ ही होती, मेरा पुत्र ही ना होता। तो माता सुमित्रा ने इस प्रकार से बताया, वह ये असली माता की बात थी, वो ये नहीं चाहती थी कि जो मेरा पुत्र मेरे साथ ही रहे मेरी सेवा करे। ऐसा जो जी भक्ति कर रहा है वो ऐसा किसी के साथ भी नहीं चाहेगा कि ये मेरे साथ रहे और मेरी सेवा करे, कोई भी व्यक्ति कभी भी नहीं चाहेगा ऐसी बात अगर भक्त है तो। उसके बाद कहती है कि देखो लक्ष्मण तुम जा तो रहे हो और ये राग द्वेष से बहुत दूर रहना तुम, और तुम जा रहे हो भगवान की सेवा के लिए, राग और द्वेष से दूर रहना, नहीं तो भगवान की सेवा नहीं कर पाओगे। ये मत सोचना कि भरत को राज्य मिल गया मुझे क्यों नहीं मिला, जंगल में जाके ऐसी बात कभी मत सोचना। अपने पुत्र को शिक्षा भी दे रही है उसके बाद भी कि जाओ, जरूर जाओ, जाना ही चाहिए। तुम मेरे से पूछने क्यों आए हो? तुम्हारी माता सीता है, तुम्हारे पिता राम है, मुझसे मेरे से किसने इससे नहीं कह रही मैं तुम्हारी माता नहीं हूं, तुम्हारी माता सीता है। भरत से ईर्ष्या मत करना बिल्कुल, उन्हें राज्य प्राप्त हो गया है। और कहती है ये जैसे दोनों में सुनोगे ना तो आपको और भी रस आएगा, कहती है कि स्वप्न में भी कभी मेरे बारे में मत सोचना, स्वप्न में भी ये मत सोचना अयोध्या है कोई राज्य, सोचना ही नहीं इस विषय में। जहां राम है वो ही अयोध्या है, तुम राम की सेवा करो, जहां राम की सेवा होती है वो अयोध्या कहलाता है। अयोध्या अयोध्या है ही नहीं अगर उसमें राम नहीं है, तो जहां राम है वहां अयोध्या है। तो स्वप्न में भी अयोध्या के बारे में मत सोचना और भारत के बारे में मत सोचना, और स्वप्न में भी उर्मिला के बारे में मत सोचना। उर्मिला कौन है? लक्ष्मण जी की पत्नी, नवविवाहिता पत्नी, नवविवाहिता थी उस समय वो। सोचना मत बिल्कुल भी कभी भी, और ऐसा करना भगवान राम की इस प्रकार सेवा करना कि वो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, और कष्ट ना होने के तुम रात को सोना ही मत 14 साल। राम को किसी प्रकार कष्ट नहीं होना चाहिए, रात को और विश्राम करें तो तुम बॉडी गार्ड की तरह पहरेदार की तरह रहना, जब सुबह उठे तो उनको स्वच्छ जल ला के देना, खाने के लिए सामग्री ला के देना, सोना मत रात को तुम, तपस्या करना। ये मनुष्य जीवन जो मिला तपस्या के लिए मिला है, वो इस प्रकार से उपदेश दे रही है। आजकल की माता थी तो क्या बोलती, अरे जब छोड़ना ही था तो विवाह क्यों किया तुमने उर्मिला से, वो और मोह उत्पन्न करेंगी। आजकल की माता है कुमाता, असली माता नहीं है, कुमाता है, ज्यादातर संसार में कुमाता, ज्यादातर नहीं ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट बोलना भी कम है, मतलब 99.9 को जितना आगे तक लेके जा सकते हो वहां तक चले जाओ, उतनी माता जो है कुमाता है। इनमें सबकी माताएं आती हैं। तो आजकल की कोई माता होती तो यही बोलती, शादी क्यों करी तुमने, छोड़ना ही था तो, ये भी कोई बात है, ऐसे कैसे चले जाओगे तुम, मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, मैं बूढ़ी होगी तुम कैसे क्यों जाओगे, ऐसा क्यों नहीं करते, उर्मिला को भी साथ ले जाओ, दोनों बाबियां साथ रहेंगी, साथ में बनाएंगी खाएंगी, दोनों की सेवा करेंगी। आजकल की कुमाता होती तो ऐसे ही बोलती, कहती है स्वप्न में भी मत सोचना उर्मिला के बारे में, मेरे बारे में या अयोध्या के बारे में, सोचना ही नहीं है, एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, वंस डन इट इज डन, दोबारा सोचने की आवश्यकता नहीं है, हो गया काम, एक बार डिसीजन लिया देन वॉक द टॉक, डोंट टॉक कि मैं राम की सेवा करूंगा। ज्यादातर हम लोग सिर्फ ये बातें ही करते रहते हैं। जो कर्तव्य होता है व्यक्ति को वही निभाना चाहिए, उसको अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होना चाहिए, कर्तव्य से अलग नहीं होना चाहिए। जो माँ का कर्तव्य है माँ को वो निभाना ही चाहिए, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, चाहे पुत्र जंगल में जा रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, आप अपना कर्तव्य करो। अगर पुत्र जंगल में भी जा रहे हैं तो पालन करने वाला कौन है? भगवान। अगर भगवान आपको पालन महल में कर सकते तो जंगल में क्यों नहीं कर सकते, बताइए। अगर आपके पुत्र का या किसी का पालन अगर महल में, भगवान महल में पालन कौन कर रहा है किसी भी जीव का? भगवान। तो जंगल में क्यों नहीं करेंगे? इसी प्रकार का स्वभाव था माता सुनीति का। कौन है माता सुनीति? ध्रुव महाराज की माता। उन्होंने बोला मैं भगवान को खोजना चाहता हूं, भगवान कहां मिलेंगे? उनकी माता कहते जंगल में जाओ। इसे कहते हैं सुमाता, असली माता, रियल मदर, नहीं तो मदर के नाम पे धब्बा। कुमाता, कुपिता, कुमाता, ये कलयुग है, इसमें यही युग चल रहा है, सब कुमाता है, सब कुपिता है। और अपने पुत्र को अपने पास अगर कोई रख भी लेगा तो कितने देर के लिए रखोगे? काल की चपेट में क्या क्या पुत्र नहीं आएगा क्या? चार दिन मैक्सिमम चार दिन के लिए रख पाओगे, वैसे भी अलग होगा ही होगा। तो राम की सेवा के लिए अगर अलग होता है तो बड़ी खुशी की बात है। तो इस प्रकार की माता सुनीति की और माता सुमित्रा की राय है और हमारे को इससे सीखना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि कष्ट में हमारे पुत्रों कष्ट ना हो। जैसे आजकल यही होता है, बेटा ऐसे करना, वो अपने बच्चे को क्या बोल रही है, सोना भी मत रात को, रात को जागते रहना, दो दिन के लिए नहीं 14 साल के लिए जागते रहना, सोना नहीं है आपको। लक्ष्मण सोए नहीं थे। तो इस प्रकार की माता है, इस प्रकार से पुत्र है, इस प्रकार से भगवान से हमें प्रेम होना चाहिए। और जब इस प्रकार की बातें चल रही थी तो माता ने बोला कि तुम जाओ, तो अभी पूरी तरह बात भी खत्म नहीं हुई थी कि लक्ष्मण भाग गए वहां से, क्योंकि वैसे ही उनका शरीर ही खड़ा हुआ था, चित्त रघुनंदन में पहले से ही आवेश था। वो किसी तरह भाग गए। और क्यों भागे? अभी तो माता ने बात बोली, बाई चांस अगर कुछ थोड़ा सा भी चेंज अगर हो जाए अगर, तो मेरे को रिस्क लेना ही नहीं है। वो तुरंत भाग गए। और उर्मिला से अपनी पत्नी से उन्होंने पूछा नहीं था बिल्कुल भी कि क्या मैं जाऊं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं ठीक कर रहा हूं। और उर्मिला का वैराग्य देखिए, वो चले गए, लक्ष्मण से वो मिली भी नहीं और ना लक्ष्मण उनसे मिले, वो चले गए वनवास और मिले भी नहीं। और उर्मिला उसको ये भी नहीं कि दुखी हो रही है, गालियां दे रही है, उसने लक्ष्मण की पूजा कर रही थी अयोध्या में वो रोज। ये सब होने के बाद तो देख रहे कि जो भक्ति के लिए कोई सारे जितने भी आपने चरित्रों के बारे में सुना है किसी भी हद तक जा रहे हैं राम की प्रसन्नता के लिए। जो व्यक्ति माता पिता को ही कुछ नहीं समझ रहा, जैसे लक्ष्मण जी हैं, पिता की हत्या करने के लिए भी उनको सोच नहीं रहे, राम की प्रसन्नता में अगर विघ्न आ रहा है तो किसी भी हद तक जा सकते हैं वो। इसी को कहते हैं व्यवसात्मिका बुद्धि, सिंगल पॉइंटेड इंटेलिजेंस। एक बार जो चीज सोच ली अब उस पर चलना शुरू, उस पर काम करना शुरू, क्लियर कट है, कोई डाउट नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। जो उस अब ये काम करने की कोई जी रहा है जिए या कोई मर रहा है मरे, उसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जो सोच लिया एक बार राम की सेवा करनी है तो बस, उसके लिए कोई भी कीमत अदा करनी पड़े वो कीमत अदा कर देनी चाहिए। रूप गोस्वामी जी कहते हैं नेवर कॉम्प्रोमाइज, भक्ति के समय संतों में पे एनी प्राइस, नेवर बार्गेन, कभी बार्गेन मत करो। ऐसा होगा तो क्या होगा, और बिना क्या होगा या सुमित्रा का क्या होगा, कोई बार्गेन नहीं करना कभी, पे एनी प्राइस। और मेरी निजी मानना है किसी भी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े वो कम ही कीमत है। आप कोई भी कीमत अगर भक्ति की अदा करते हो तो कोई खास कीमत नहीं है, कुछ कीमत है ही नहीं हमारे को। जन जन खरबों बार हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए, इस चक्र से अगर हम बाहर निकल जाते हैं, भगवान राम का सानिध्य प्रेम प्राप्त करते हैं, तो जो भी कीमत दे रहे हो वो थोड़ी सी है। उसी प्रकार से जिस जीके में ये कहीं भी आपको पूरी कोठी मिल रही है, कीमत देनी पड़ रही है 50 पैसे, कुछ है ही नहीं, आपको मिल क्या रहा है देखो। और जब तक इस प्रकार से हमारी बुद्धि नहीं होगी, इस प्रकार से दीवानगी नहीं होगी, एनीथिंग लेस देन दिस विल नॉट वर्क, एनीथिंग लेस देन दिस। अदरवाइज तो बहुत होगा, लॉलीपॉप प्रवचन सुनेंगे, यस यस करेंगे, हाँ हाँ, और बस यहीं पर ही रहेंगे। जैसे द्रोणाचार्य है, द्रोणाचार्य ने पक्षी रखा पेड़ पे, पूछा, सबको बुलाया, पांडवों को कौरवों को, दुर्योधन को बुलाया, क्या दिख रहा है? आसमान, पेड़, टहनिया, पत्तियां और पक्षी भी। द्रोणाचार्य बोला बैठ जाओ तुम। भीम को बुलाया, भीम क्या दिख रहा है? वही पेड़, ये वो सब कुछ। अर्जुन को बुलाया, अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? पक्षी दिख रहा है? नहीं। पक्षी की आंख दिख रही है? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा। आंख के अंदर की जो आई बाल है वो दिख रही थी सिर्फ। इस प्रकार से मेरा सात्विक का बुद्धि है अर्जुन की, सिर्फ ये जो देख रहे हैं उसी को देख रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। इसे कहते हैं शून्यायतन जगत सर्वम गोविंद विरहन में, कृष्ण के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। कौन माता, वो कहते मैंने लक्ष्मण जी की एक बात बताना भूल गए। लक्ष्मण जी कहते मैंने सपने में भी किसी को अपने माता पिता नहीं माना, आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो। त्वम एव माता त्वम एव पिता, कोई नहीं, कोई जी रहा है जिए, नहीं जी रहा नहीं जिए, किसी के जीने में मतलब इस संसार में कोई सिग्निफिकेंट है ही नहीं। कोई भी इवेंट इस संसार में सारे इवेंट इनसिग्निफिकेंट है, कुछ भी नहीं है सिग्निफिकेंट। अगर कृष्ण नहीं है तो कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं है। और वैसे भी आप थोड़ी बुद्धि के स्तर पर अगर सोच भी लो, क्या कोई व्यक्ति हमारी वजह से जी सकता है मर सकता है क्या? अगर वो वाला रीजन भी ले लें कि अगर कोई हमको डर लगता है क्या होगा, हमने कोई डिसीजन है स्ट्रॉन्ग स्टेप ले लिया कृष्ण की सेवा में, क्या होगा? अरे क्या होगा आप बता दो, क्या होगा आप बताओ, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है हद से हद, हद से हद क्या हो सकता है मैक्सिमम?
चींटी छलांग मार नहीं सकते।
हाँ,
चींटी लंबी छलांग नहीं मार
सकते। आपको इनसिग्निफिकेंट व्यक्ति कोई भी बहुत सिग्निफिकेंट काम कर नहीं सकता। हम अपने फायदे के लिए भगवान की शरण ले रहे हैं, उसमें भी वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है निशांत, क्या हो सकता है वर्स्ट से वर्स्ट? वर्स्ट वर्स्ट बोल रहा हूं मैं, हद से हद, सारी हदे की हद क्या हो सकता है, क्या हो सकता है हद से हद? हाँ, वो तो वैसे भी छोड़ना है, जाते से ध्रुवा व्यक्ति जो यहां पे आया उसको जाना है। और कब जाता है व्यक्ति? जब 1,70,570,000 सांस जो भगवान ने अलॉट किया है, 570,000 जैसी होगी तभी जाएगा। चाहे नरक में जाओ चाहे आप विदेश जाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है उनके, हमारे माता पिता के किसी भी जीव के जीवन का आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप कहीं पर भी चले जाओ, उन्होंने जितना जीना है उतना ही जिएंगे सभी। ये नहीं कि हमारे माता पिता जितनी अलॉट की गई है सांस से उतने जिएंगे, कारण कोई नहीं हो सकता है। कुछ भी हो जाएगा, वो हार्ट अटैक आ गया या कुछ भी, तो हार्ट अटैक आ गया तो कारण तो कुछ ना कुछ बनेगा ना। हार्ट अटैक आया या सुसाइड कर ली या कोई सूरज चला गया या जो भी है, कारण कुछ हो सकता है, कारण तो कोई ना कोई बनेगा ही सही, नहीं तो मृत्यु कैसे होगी, मृत्यु कैसे होगी? और ये हद से हद है, ऐसा नहीं कि ऐसा होने वाला है, कहीं व्यक्ति घबरा जाए ऐसा नहीं कि ऐसा होगा, क्योंकि कोई भी हमारे से इतना प्रेम नहीं करता कि हमारे लिए मर जाएगा। टीवी देखेंगे दो दिन बाद सब लोग मिलके सास बहू की कहानी और इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच और 24 घंटे न्यूज चैनल और शादियों में जाके नाचेंगे यही लोग। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, कोई भी कीमत अदा करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए हमारे कभी भी। लक्ष्मण जी दशरथ को मारने को तैयार है, उर्मिला मिल भी नहीं लक्ष्मण से, उसके बावजूद भी उनकी पूजा कर रही है। बताओ ये कौन से लॉजिक से बात ठीक होती है? नवविवाहिता पत्नी पूजा कर रही है, उनकी सुमित्रा माता ये कहती है मेरे से पूछने नहीं आना था तुम्हारे को, तुम्हारे माता पिता तो मैं हूं ही नहीं, तुम्हारे माता पिता तो कोई और है। तो ये जो कथाएं होती हैं, ये जो शास्त्र में बात बताई गई है, ये एक होता कथा, एक होता इनसे टीचिंग प्राप्त होना। तो हमारा केवल कथा सुनकर ताली बजाने के लिए नहीं होता, ये बाकी भगवत सत्ता में होता है, सुनो और ताली बजाओ। हम कोई भी चीज सुन रहे हैं अगर हमारे हृदय में कुछ हो ही नहीं रहा तो कोई खास लाभ नहीं है सुनने का। हमको रात को नींद नहीं आनी चाहिए, अरे ये मैं क्या कर रहा था, कमाल है। फाइनली आई शुड चेंज। कृष्ण क्रांतिकारी पुरुष है, आदि पुरुष है पर क्रांतिकारी पुरुष भी है। तो कृष्ण कथा भी क्रांतिकारी है। अगर कृष्ण कथा आपके हृदय में जा रही है तो क्रांति होगी होगी, अगर आप स्वीकार कर रहे हो। कृष्ण कथा कृष्ण से अलग नहीं है, बात समझने की कोशिश करो, अलग है कृष्ण कथा, कृष्ण क्रांतिकारी है। 16,108 विवाह किसी ने नहीं किए थे पब्लिकली, गोपियों के साथ राज किसी ने नहीं किया था, अपने मामा को कोई नहीं मारता, ग्रंथ से पहले दोनों को कोई नहीं मारता था। कृष्ण की कोई भी कार्य देख लो वो क्रांतिकारी है। तो कृष्ण कथा भी अगर हमारे हृदय में जा रही है तो क्रांति होनी ही चाहिए, نیچرل باتیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے.